ভট্টর গুণাত শ্রীজীব গোপাল ভট্ট দাস রঘুনাথ এছায় গোসাই করি চরণবন্দন যাওতে বিঘ্ননাশ অভীষ্ট পূরণ গুরবি গৌরচন্দ্রায় রাধিকাস্তদালয়ে কৃষ্ণায় কৃষ্ণ ভক্তায় তদ্ভক্তায় নমো নমঃ মহাভাবস্বরূপতম কৃষ্ণ প্রিয়া বরীয়সি প্রেমভক্তি প্রদেবী রাধিকেতাং নমাম্যহম রাধি বৃন্দাবনাধীশে করুণামৃতবাহিনী কৃপয়া নিজ পদাব্জ দাস্যং মহ্যম প্রদীয়তাম বন্দীনন্দ ব্রজস্ত্রীণাম পাদরণুমভীক্ষ্ণশ যশাং হরি কথোদ্গীতম পুনাতি ভুবনত্রয়ম জয় শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য দয়াল প্রভু নিত্যানন্দ শ্রীয়দ্বৈত গদাধর শ্রীবাসাদি শ্রী গৌরভক্তবৃন্দ হরে কৃষ্ণ 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 হরি হরি হরে রাম হরে রাম 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 হরে হরে বলো শ্রী গুরুজি মহারাজ কি জয় গুরু পরম্পরা কি জয় অনন্ত অনন্ত কোটি বৈষ্ণববৃন্দ কি জয় সপার্ষদ গৌরহরি কি জয় গৌর নিত্যানন্দ প্রভু কি জয় জগন্নাথ বলদেব সুভদ্রা সঞ্জীব কি জয় ভক্তবিঘ্ন বিনাশনকার নৃসিংহদেব কি জয় ভক্তরাজ প্রহ্লাদ মহারাজ কি জয় সর্বাভীষ্টপ্রতা গিরিরাজ গোবর্ধনজীব কি জয় গোবিন্দ গোপীনাথ মদন মোহনজীব কি জয় ব্রজমণ্ডল ধাম কি জয় ব্রজবাসী ভক্তবৃন্দ কি জয় ব্রজেশ্বরী মধেশ্বরী প্রাণেশ্বরী উর্জেশ্বরী শ্রীমতারাণী কি জয় জয় রাধা দামোদর ব্রত কি জয় ব্রতপালনকারী ভক্তবৃন্দ কি জয় সমবেত গৌরভক্তবৃন্দ কি জয় গৌর প্রেমানন্দী হরি হরি কাল গোপাষ্টমী তিথি যব গোপাষ্টমী মানায় গেয়া সমস্ত গোপ ইয়া নেই কি কেবল সব লোক কৃষ্ণকে সারানা কিয়া পূজা কিয়া কৃষ্ণ নে সমস্ত গোপ কি পূজা কিয়া আর আশীর্বাদ লিয়া কৃষ্ণ সবক সম্মান করতে থে কিন্তু আজ ঋষি মহর্ষিও নে বতলায়া পুরখো কি পূজা নেই কি যায় আশীর্বাদ নেই লি যায় তো আগে চলকে পরম্পরা নষ্ট হয়ে যায় চলে কি নেই ইসলিয়ে ইয়ে কার্তিক মহিনা মে যে শুক্লাষ্টমী আতা তো ইয়ে অষ্টমীকে দিন মে কৃষ্ণকে জন্ম নক্ষত্র কৃষ্ণাষ্টমী কৃষ্ণপক্ষকে আর শুক্লপক্ষকে যে অষ্টমী হে রাধারানীকে হে তো অভি কৃষ্ণ সব গোপকে পূজা করেন সম্মান করেন উনকা উপহার দেন আশীর্বাদ লেন জব উনকা কৃপা আশীর্বাদ মিলেগা তব ক্যা হোগা ও আপনি গোপকুল মে আয়েন জব তক আপনি খানদানকে বড় কি আশীর্বাদ নেই হ্যাঁ কৃপা নেই হ্যাঁ তো ব্যক্তি আবারা হ্যাঁ ও অর্পেন হ্যাঁ অর্থাৎ উনকা কই মূল্য নেই হ্যাঁ অর্থাৎ কিসকে কৃপা উনকে উপর নেই আশীর্বাদ নেই তো ক্যা হ্যাঁ ও অনাথ হ্যাঁ সনাথ নেই হো সকতা তো ঋষি নে কহা ये अष्टमी के दिन में कृष्ण जाकर के सब परिजन ऋषि और इधर जो बड़े बड़े गोप है गोपों की पूजा करेंगे। कैसे पूजा करेंगे? ऐसे उनको निकलने देने रहते यशोदा माता या नंद बाबा। तो जब सुना गोपों की पूजा करने से आशीर्वाद मिलते मिलेगा और सक्षम होंगे और स्वस्थ रहेंगे और गुणवान और बलवान विद्वान होंगे, तो नंद बाबा बोले ठीक है, ये तो बहुत अच्छी बात है, पूजा करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए और हम उससे पूजा करवाएंगे। इससे समस्त ब्रजमंडल में सब निमंत्रण दी गई कि आज गोपों की पूजा होगा। हाँ, उसे मुख्य मुख्य गोप जो है उन लोगों को सिंहासन में बैठा करके पगड़ी देख बांध करके सर में तिलक करके और उनके उनके चरणों में पुष्पांजलि देके कृष्ण तब उनके आदर सम्मान के द्वारा उनके आशीर्वाद को लाभ करेंगे। सदा के लिए वो लोग कृष्ण के ऊपर पुष्पा आशीर्वाद की वर्षा करते रहेंगे। कृष्ण सक्षम और कृष्ण के सुरक्षाएँ होंगी। ये देख कर के नंदोबा की जो नंदोबा की जो सबसे मुख्य उद्देश्य था आज परिपूर्ण होने जा रहा है। इसे क्या किया, नंदोबा ने बहुत बड़े उत्सव मनाया व्यवस्था की। हाँ, यशोदा माता को कहा आज तक हमने निमंत्रण दिया कृष्ण के जन्मतिथि में और सब लोग को सम्मान किया, किंतु कृष्ण उस समय खुद अपने हाथ से पूजा नहीं की, कृष्ण को सबने तिलक किया, कृष्ण ने सम्मान किया किंतु कृष्ण किसी की पूजा नहीं की। ठीक है, आज कृष्ण गोप पूजा करेंगे, गोपों की पूजा करेंगे और क्या करेंगे, कृष्ण जो गोपियों में श्रेष्ठ गोपी है हाँ, उनकी भी पूजा करेंगे। यह सुंदर व्यवस्था देकर के नंद बाबा ने सुंदर उपायन उपहार सब व्यवस्था की। जब ये बात सर्वत्र फैल गया, यहाँ तक कि मथुरा में कंस के निकट तक ये सब खबर उनके खोपियाओं ने पहुँचा दिया और बतलाने लग गए कि अब तो कृष्ण युवराज हो गया और आगे चल के वो केवल मात्र वन में ही नहीं मथुरा तक भी आ जाएगा, इसलिए आपको अब इससे व्यवस्था बनानी है। तो आप तो जाएंगे नहीं, अतः उनको निमंत्रण दी जाए, बुला लिया जाए और विरोध से दुश्मन पीछे हटता है, छिपता है और उनको सब तरह से आदर सम्मान देके पूजा करके बुला लिया जाए और आपका यहाँ ही मनोरथ पूरा हो जाएगा। इससे अपने मंत्रियों की मंत्रणा सुनकर के उन्होंने अपने अक्रूर जी को बुलाया, समस्त यादव चला गया, इधर उधर छिप गया, किंतु और उन्होंने कुछ तो जो नहीं गए तो उनको जेल में डाल दिया। और आज क्या किया, अक्रूर को बुलाया बड़े आदर सम्मान देके और चाचा जी कहने लग गए। हाँ, कहने लग गए आप हमारे हितकांक्षी है, शुभाकांक्षी है, मंगलाकांक्षी है, आपके निकट हमारा निवेदन है, हम कुछ जीवन में पुण्य कार्य किया नहीं, कोई शुभ कार्य किया नहीं, सब समय अमंगल सूचक सब कार्य आदि किया, अतः आज मेरा इच्छा है कि मैं ये चतुर्दशी को मैं धनुर्यज्ञ करूँगा जिसमें कि शिव जी की पूजा होगा और मल्ल युद्ध होगा और प्रसन्न करने के शिव जी को सब तरह से सब देवताओं को बुलाया जाएगा और ब्रज में जाकर के नंद को निमंत्रण दो और वो अपने बालकों के साथ आ जाए और गोपो गोपानंद सुनंद अभिनंद सबको निमंत्रण दो। इधर विश्वानंद महाराज को जितने ब्रज के गोप है हाँ सबको निमंत्रण दो सभी धनुर्यज्ञ के लिए उपहार के साथ और वो लोग आके पहुँचे और मैं हाँ ये यज्ञ संपादन करूँगा। और जो लोग सुंदर रूप से मल्लयुद्ध में जीतेंगे उनको पारितोषिक दूंगा, मान सम्मान के साथ उनको पारितोषिक दूंगा। किंतु कपट लोग ठग लोग बहुत बहाना जानते हैं, यदि जो विदेशी देसी लोग यदि मीठा बात करने लग गया तो हमें समझना चाहिए कि इसका परिणाम बड़ा भयावह है। क्योंकि दूसरे लोग कभी मीठा बोलते नहीं हैं, किसी को हाथ जोड़ते नहीं हैं और मान सम्मान देते नहीं हैं, ये उनका स्वभाव है। और वो यदि मीठा बोलने लग गया तो लोग समझते हैं कि बदल गया, बदल नहीं गया और कुछ और अतिक्रम करके और बड़ा काम करने जा रहा है। तो क्रूर सब समझते हैं किंतु क्या करें, उनके पास रहना है। और कहते चाचा जी जाएंगे बुला के लाएंगे तो अच्छी बात है, और नहीं लाएंगे तो या तो आप मेरा मुख काला मुख देखेंगे नहीं तो मैं आपके निकट से विदाई लूँगा या आप विदाई लेंगे। क्योंकि तरीका राजनीति के बड़े सूक्ष्म होते हैं। तो वो अक्रूर सभी समझते हैं क्योंकि अभी कम नहीं है। हाँ इससे अक्रूर जी सोचे चलो कुछ भी है कृष्ण के चरणों के दर्शन तो मिलेगा और अंतिम यात्रा हो तो कोई बात नहीं, और यदि इनके अंतिम सांस लेना होगा तो बढ़िया है। और तो मैं और क्या बोले चाची ऐसे मत जाना पैदल पैदल नहीं, मैं अपने जो रथ है उस रथ को भेजूँगा, आप रथ में चढ़ के जाइए और उन लोग रथ में लाइए और बैल बुग्गी में नहीं, कोई शीघ्र जाना है शीघ्र आना है। क्योंकि यही रथ में देवगी को विदा करने के लिए कंस सज धज करके सारथी बन के हैं और चल रहे थे। और यह आकाशवाणी हुई देख यही देवगी के आठवां पुत्र तेरा महाकाल होगा, तेरे लिए मृत्यु योग के उपायन लेके आएगा और व्यवस्था करके ही छोड़ेगा। तो बिगड़ गया था, बहुत बिगड़े और देवगी को मारने के लिए तैयार हो गया, मार दूंगा तो कोई बच्चे नहीं होंगे। तो उस समय वसुदेव महाराज जी ने बड़े नम्रता से उदारता से उनको समझाया, देखो ये बहन को मारना और केवल विवाह करके अभी जा रहे हैं और इनके पुत्र अब तो है नहीं, ठीक है यदि पुत्र होंगे तो तुमको मैं सब दे दूंगा, तुम मारो काटो चटनी बनाओ पकौड़ा बनाओ खा लो कुछ भी करो तुम जानो, हम सत्य प्रतिज्ञ है। बहुत समझाया किंतु मानने को तैयार नहीं। इसके बाद में भूषदेव महाराज ने देखा ये तो मानेगा नहीं और किस तरह से समझेगा नहीं। भूषदेव महाराज ने सत्यम विशुद्धम भूषदेव शब्दितम विशुद्ध सत्य स्वरूप भूषदेव महाराज स्वयं भगवान के प्रिय भक्त है। क्योंकि पहले भी तीन जन्म में उन्होंने बहुत तपस्या की और भगवान उनके पास आए भी द्रोण धरा कश्यप पद्धति हैं तो बहुत उपासना किया, उन्होंने झट प्रभु को स्मरण किया। जब प्रभु को स्मरण किया प्रभु स्वयं आकर के भूषदेव के वाणी में बैठ गए हैं और कर्णमन रसायन भूषदेव महाराज जी ने कहने लग गए अरे कौन सा आप इतने बलवान हो पहलवान हो और दुनिया में कोई आया तो जाएगा हैं, और यदि मृत्यु लिखा हुआ है उसको कोई टाल से होने को टाल नहीं सकता, और तुम अपने बहन को मार करके इतना बड़ा बदनामी स्त्री हत्या करना कोई साधारण बात है, और वो भी बहन, बहुत समझा करके वो शब्द भगवान बैठ गए उसमें, वो वाणी कानों में पहुंच करके कंस को शांत कर दी, ठीक है मैं छोड़ देता हूँ हैं, किंतु बालकों को मुझे दे देना। बोले कोई बात नहीं, पहले कंस सब पहला बालक हुआ तो दे दिया। बोले नहीं 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 ये तो मुझे मारेगा नहीं, ये ले जाओ। ये तो नारद जी आए, नारद बोले कंस, बोले गुरुदेव हाँ बेटा आप पूजा किया। बोले अरे तू मूर्ख है, वसुदेव का बच्चे को छोड़ दिया। बोले क्यों गुरुदेव, वो तो आठवां मारेगा ना, आठवां से शत्रुता है। बोले तू मूर्ख बुद्धि नहीं है, पहला छोड़ेगा दूसरा छोड़ेगा तीसरा, सात को छोड़ देगा ना, ये आपके दुश्मन नहीं बनेगा, ये बदला नहीं लेगा आठवां को मारेगा तो, और पहले वाला तब तो कितने उम्र का हो जाएगा हैं, तो शत्रुता को समूल से ध्वंस करना चाहिए। कांटा का पेड़ उखाड़ दो तो कांटा होएंगे नहीं और चुभेंगे नहीं। बोले अच्छा गुरुदेव, झट भगा जाकर देवी की गोदी से ले करके दिम मारा, खत्म कर दिया। देवी को क्या हो रहा है, अरे भैया ये क्या कर रहा है। बोले क्या कर रहा हूँ अभी देख ले। फिर भागने मारने के लिए तैयार हो गया। वसुदेव महाराज जी ने फिर स्तुति की भगवान से, फिर शांत हो गया। बोले अब चल जेल में चल, तेरे लिए जेल ही बड़ी बढ़िया है, बाहर नहीं, नहीं तो तू भाग जाएगी कहीं, फिर तेरे बच्चे पकड़ नहीं पाऊँगा। जेल में लेकर के हाथकड़ी पेड़ी दे के पत्थर छाती में दे के बंद कर दिया। खाना भी नहीं देते, पानी भी नहीं देते, अंधकार कारागृह ऐसे मर जाए, मैं मारूंगा नहीं ऐसे मर जाए भूखे। किंतु अक्रूर ने देखा यदि मैं गाढ़े समय में इससे मित्रता नहीं करूं और देवकी वसुदेव को नहीं बचाऊं तो मेरे जैसा अकृतज्ञ कौन होगा, जो हमारे लिए इतना छोट आत्मीय थोड़ा भी उपकार करता है उसको कभी भूलना नहीं चाहिए, तो कृतज्ञता को स्वीकार करना चाहिए। अब क्या किया, अक्रूर ने कंस से बड़े प्रेम कर ली हैं, उनके आदर परिचर्या गुणगान करके इतना प्रेम कर लिया हैं। कहते मैं क्या कभी कभी आपके जेल का परिदर्शन कर सकता हूँ, ये लोग पहारा दे रहा है कि नहीं दे रहा है, नहीं तो देवता लोग घुस कर बुद्धि बिगाड़ देंगे, इससे मेरे को यदि आप आदेश दें मैं जेल में जा करके आपके जो संतरी पहारादार है इनको मैं देखभाल करूं, हाँ ये जिम्मेदारी मुझे दे दो। बोले ये अच्छी बात है, आप हमारे संतरी पहाराओं को दारों को देखोगे तो मैं भी खुश हो जाऊंगा। वो जेल का कपड़ा पहन करके सिपाही का और छिपा करके पानी खाना ले करके हैं और देवकी वसुदेव को जाके पालन पोषण करते, क्योंकि उनको कोई कुछ बोल नहीं सकता, वो तो जेलर है उनको क्या बोलेगा। बड़े मुश्किल से रोजगार रोज दिन इनको पालन पोषण करते और देखभाल करते। एक दिन वसुदेव महाराज कहते हैं देवकी तुम्हारे भाग्य में कभी सुख नहीं लिखा है, विवाह करके आई तो जेल खाना के शिकंजे में फंस गई, बच्चे हुए तो वो मार दिया और मार दे रहे हैं, तो ऐसा दुख के समय हैं कब तक रहेगा। देवो कहते कोई दुख नहीं है, बड़े मैं प्रसन्न और सुखी हूँ। बोले क्यों, बोले आप जैसे संत महात्मा मिले हैं मुझे हैं, तो सबसे भगवत स्मरण कराते हैं, भगवत वाणी सुनाते हैं, और जब तक दुख नहीं होता तब तक मैं प्रभु को स्मरण नहीं करती, दिन रात घर गृहस्थी में होता तो सारा दिन कामों में व्यस्त हो जाती और आत्मसर्जन कुटुंबों की परिचर्या में रत हो जाती, यहाँ तो समय नहीं मिलता। अब 24 घंटा में 24 घंटा न खाना न पीना न सोना, न बिस्तरा कपड़ा लत्ता न कुछ न दिशा मैदान हाथ पैर बंधे हुए हैं प्रभु के स्मरण के बिना और कोई उपाय नहीं। और आप जैसे महात्मा सब समय स्मरण कराते रहते हैं अहो भाग्य है हमारा हमें कोई दुख नहीं है। हाँ वसुदेव महाराज कहते हैं सचमुच में तुम्हारे ऊपर भगवान की बहुत कृपा है अतः तुम भगवान के हो हृदय में धारण करने योग्य बन गई हो। इतने में जब भगवान आ भी गए छठवा पुत्र को मार दिया साथ में बलदेव प्रभु शंकरसन राम आ गया अब कंस जेल में नहीं आ सकता। क्या स्वप्न देखता है बड़े बड़े सांप अंतदेव स्वयं विराजमान है तो क्या करेगा शेषाई ओ आता है तो इतना गर्जन हुंकार और देखता है तो देवकी को एकदम तेजस्वी हो गई और अंधकार कारागृह अब नहीं है वहाँ उजाला हो गया हाँ बड़े विभवित हो गया सोने जाए तो खाने जाए तो सब समय उनको नागराजी दिखे और एक फन ने कितने फनों से आक्रमण कर रहे हैं घबरा गया। अब देवी को गाली नहीं देते सताते नहीं मारने मारने जाते नहीं धमकाते नहीं जेल के अंदर जाते ही नहीं और घर में सो भी नहीं पाता खा भी नहीं पाता। अब तो बाबरे हो गए मेरा काल आ गया सोचते 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 आखिरी में जब गर्भपात हो गया शांति हो गया बढ़िया हुआ नष्ट हो गया अच्छा हुआ शायद मैं मार भी नहीं सकता मेरे को ही मार डालता ये सांप नाक खा जाता चला गया। अब आठवें के लिए इंतज़ार कर रहे हैं जब उन्हें आठवें को मारने के लिए सुना बच्चा हुआ गया तो देखा लड़की है और देव लात और पलट दिया कलामंडी खा के ऊपर देखा ये तो मेरा देवी माँ है हाँ तुम्हें क्या मारेगा तेरे को मारने वाला कोई और जन्म ले लिया। अच्छा तो यहाँ जन्म नहीं लिया कहीं और जन्म लिया मेरे माँ तो झूठ नहीं बोलेगी। तब मंत्री को बुलाया मंत्रणा किया मेरे मारने वाला कोई और जन्म ले लिया तो ये कौन सी बड़ी बात है दस दिन के अंदर एक महीने के अंदर इतने बच्चे हुए हैं सबको जाकर पकड़ कर मारो और ले आओ छोड़ो नहीं उसको पकौड़ा बना के चटनी बना के अचार बना के खा लो काट काट के बांट दो क्योंकि असुर का स्वभाव ऐसा ही है पानी में जाएगा मछली पकड़ लेगा उसको टुकड़ा टुकड़ा करके रिश्तेदारों को बांटेगा कहीं से बकरा लाएगा कहीं से भेड़ लाएगा कहीं से सुअर लाएगा कुत्ता लाएगा और घोड़े लाएंगे ऊँट लाएंगे हैं और नहीं तो भैंस लाएंगे बस क्या आनंद मचाते हैं बड़ा भैंस लाए ना क्या खुशी उसको टुकड़ा टुकड़ा करके सबको बांट दिया माँ का प्रसाद है खा लो वाह। तो कंस के चर अनुचर हाँ कैसे थे खेचर जलचर सब उनके अनुजाई थे तो सब हा हा हु करके हंसने क्या डरते हैं आप हम अभी जा रहे हैं। पुत्र कहते हैं मेरे भाई बड़े भाई काय को सोच रहे हो मेरे रहते हुए तुम्हें चिंता करने की कोई बात ही नहीं है अभी देखो पकड़ पकड़ के सारे बच्चे को ला करके और हरे हरे कोमल कोमल तुम्हारे दोनों पत्नी को देती हूँ और तुम्हारी पत्नी भाजी पकौड़ी बना करके अभी पाव भाजी तुमको खिला देंगे सबको खिला देंगे चिंता की कोई बात ही नहीं है। बहुत अच्छी बात है और रोज़ आजकल भंडारा चलने लग गया हाँ क्यों इतने बच्चे पकड़ के लाते किसी को गला दबा के मार देते किसी को कुछ हाँ खोपड़ी तोड़ तोड़ करके चटनी बना लेते कोई अचार डाल देते बस रोज़ भंडारा हो रहा है हाँ असुर की भंडारा दावत चल गया हाँ सारे बच्चे ब्रज का ख़त्म कर रहे हैं। तो किंतु 10 साल में बहुत हत्यारा बहुत कुछ कर रहा कभी तीनावर्त को भेजा कभी शकटासुर को भेजा कभी किसी को भेजा बकासुर को भेजा अगासुर को भेजा कालिया को भेजा दुनिया भर के उन्हें हाथ पैर पटक लिए किंतु कुछ नहीं कर पाया अब अक्रूर को भेजा और प्रेम से बड़े चाचा जी आदर करके सोने का रथ दे करके और ऐसा नहीं जाते समय नंद के लिए और बालकों के लिए उपहार भेजा। कैसे उपहार? हैं, वो भी सब जहरीली चीज़ें, जिससे कि ये नंद ना नहीं कर सके। जैसे असुर दानवों के पास में गांजा, भांग, चरस, हीरोइन, जितने प्रकार ड्रग्स होते हैं सब उनके पास मौजूद होते हैं। जानते हैं उसका व्यवहार कैसे करना है। कोई जाकर स्प्रे कर देगा, बाथरूम में जाओ स्प्रे करके रख देगा, अब जाओ बेहोश हो जाओ, उठ ही नहीं पाओ। सोने के लिए जाओ घर में, जैसे ऑक्सीजन खत्म हो जाए तो उसके लिए स्प्रे कर दो, पानी में कुछ डाल दो। तो एक से कलाकार है, सब उस्ताद है, सब जानते हैं। तो अक्रूर को बोला, देखो इतने उपहार हम देते हैं क्योंकि मिठाइयाँ ले जाओ तो उसके अंदर में वो भांग भर के ले जाओ, खा लेगा ना, बुद्धि चकरा जाएगा। किंतु ग्वाले और गोप जो होते हैं और भी बड़े चतुर होते हैं, कुछ नियम है, कहते गुरु से कपट और मित्र से बैर, या अंधा या कोढ़। गुरु से कपट करके कोई बच नहीं सकता और मित्र से बैर नहीं चलता है, यदि सतमुज मित्र है तो। तो इनको इतना मीठा मीठा कह करके उपहार आदि दे करके भेजा, किंतु अक्रूर सोचता है इन उपहारों को मैं नंद को दूं, कभी नहीं, क्योंकि इसमें कोई चीज़ शुद्ध नहीं है। एक तो अपवित्र व्यक्तियों के हाथ का छुआ हुआ खाना ही नहीं चाहिए। इससे यहाँ नियम है, हमारे यहाँ कहते हैं गुरुवर्ग, अधीक्षित लोगों का छुआ हुआ अन्न जल कुछ नहीं खाओ छुओ। यदि भगवान की मूर्ति की पूजा भी करता है, चरणामृत भी नहीं लो, उनके दिए हुआ भोग भी छुओ नहीं। क्यों? आचार्य रामानुज जब सन्यासी या माधुगुरी के लिए जाते थे तो वहाँ के सारे जो रंगनाथ जी के पूजारी ब्राह्मणों के घर में ही भिक्षा लेने जाते, तो ये लोग उनके आगे चल नहीं पाता, सारा दोष त्रुटि निकाल कर उनको सुधारने की कोशिश करते कि ये सुधर जाए, ठीक से पाठ पूजा करे भगवान की। ये गलत काम करने को और नहीं करने को तो ये सबको ठोकर लगाते, बोलते बिगड़ गया। ब्राह्मणी को बोले ये माधुकुरी लेने आएगा, इसको ये भिक्षा देना एकदम जहर मिला के, जैसे कि ये आज ही खत्म हो जाए। अब ये भिक्षा लेने आए तो ब्राह्मणी थाली भर के ला रहे हैं भिक्षा, क्यों माधुकुरी में चावल डाल ले लेते नहीं, ओ पके हुए अन्न वहाँ तो वो बनता है, डोसा, इडली, चटनी, जहाँ का जैसे खाना है, फुलिहरा और रसम, क्या चारूपानी, कैसे कैसे चीज़ें नाम है, चटनी ज़रूर चाहिए। तो लाता है तो दे रहे हैं, तो बोल दिया ब्राह्मणी ने, डरते तो हाथ कांप रहे हैं, बोलते हैं ये प्रसाद को हम दे रहे हैं, आप पहले एक कुत्ता को खिला देना फिर खाना। तो रामानुज ने बोला ये क्या बात है, क्यों ऐसे बोल रहे हैं? क्या सन्यासी की टोली साथ में है? तो उन्होंने एक कुत्ता को तो सेवक ने डाल दिया, कुत्ता खाया, तुरंत मर गया। ये बात छटकुप सुड़ी को और रंगपुरी को और महापूर्ण को तुरंत खबर फैल गया चारों तरफ, उनके बड़े गुरु भाइयों को। वो लोग सब आए, बोले आज से रामानुज माधुकरी करने नहीं जाएगा, इनके जो सेवक है ये प्रसाद बनाएगा, भोग लगाएगा, और अधीक्षित लोगों का कभी छुआ हुआ अन्न कभी ग्रहण नहीं करना, उनको विश्वास नहीं करना। ताज अक्रूर बहुत उपाय लेके गए किंतु एक भी चीज़ उन्होंने नंद भवन तक नहीं पहुँचाया। देखा ये वस्तु अपवित्र है, अमैध है, और असुरों का दिया हुआ अन्न भी कभी शुद्ध नहीं होता, चित्त अपवित्र है, अब नहीं ग्रहण करना है। तो उन्होंने सब चीज़ मथुरा में ही सीमा पार करते करते सब कुछ जंगलों में डाल दिया और खाली रथ लेकर के गए और जाकर के देखा शाम दिन में नहीं गया, शाम हो गया। जब शाम हो गया क्या गोचारण से कृष्ण आ गए, तब तक चरण धूलि कृष्ण के पड़ा था, चरण चिन्ह पड़े थे। वो उछल कूद करके रथ से उतर करके उन धूलियों में लोटपोट खाया, चरण चिन्हों को छाती में लगाया और प्रार्थना करने लगी कि कृष्ण बलदेव मुझसे बात तो करे, कभी चाचा जी तो कहे और नंदा मुझसे रूठे नहीं। भगवान से प्रार्थना करते 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 आए, शाम हो गया, रात हो गया, नंद भवन में दियाबत्ती जोड़ करके अभी प्रसाद की व्यवस्था हो रहा है। अक्रूर आए तो नंद बाबा से मिले, नंद बाबा ने उनको स्नान आदि वस्त्र आदि से अलंकृत करके प्रसाद के लिए बुलाया। कृष्ण बलदेव अंतर्जामी देख रहे हैं और भोजन आदि किया, किंतु इनके मन में सदा सर्वदा कृष्ण के चिंतन और बलदेव का है। आखिर में जब प्रसाद हो गया एकांत में कृष्ण बलदेव को बुला करके प्रार्थना करने लगे, ये देवकी वसुदेव, वसुदेव के पुत्र ये बलदेव है, रोहिणी के पुत्र, और वसुदेव को जेल में देकर के कंस बहुत सता रहे हैं, मारने मारने को धमकी देता है, और बालक नंद के यहाँ पाले हुए हैं, अतः तुम लोग उसके लिए कुछ सोचो, कोई उपाय सोचो, और निमंत्रण भेजा है, यदि तुम लोग नहीं जाओगे मैं खाली जाऊँगा तो मुझे मार डालेगा और तुम्हारे माता पिता को भी मार डालेगा और जितने यादव है सबको संहार करेगा, बड़े क्रूर है, निष्ठुर है, इससे तुम लोग हमारे साथ चलो। तब बलदेव ने दाव ने क्या कहा, आप बाबा से कहो, उनके बिना आदेश का तो हमें कहीं एक कदम नहीं जा सकते। तो फिर नंद बाबा के पास गए, नंद बाबा का प्रार्थना की ये कृष्ण बलदेव को लेकर के आपको मथुरा चलना है। कंस ने धनुर्यज्ञ की व्यवस्था की, मल्ल युद्ध कुश्ती का दंगल का समारोह किया, सब देशों से सबको बुलाया और धनुर्यज्ञ में उपहार आदि लेकर के जाने के लिए उन्होंने आदेश दिया। अतः आप लोग घी मक्खन दूध दही मिठाई ये सब लेके चलो। नंद बाबा ने तड़के सुबह सुबह सब जगह खबर कर दी। यही आज नवमी है, इसको अक्षय नवमी कहते हैं। आज के दिन में नंद बाबा चलने के लिए तैयार हुए, सब गाड़े भर करके, घड़े भर भर करके, और भी गोपने नंद बाबा को पीछा किया, किंतु ब्रजदेवियों की महिमा ये वर्णनीय अवर्णनीय है। जसोदा माता अनुरोध किया कि लाला को लेके जा रहे हो किंतु लोटा के ले आना, क्यों, उनके मन में संशय क्यों था, क्योंकि बलदेव तो रोहिणी के पुत्र है वसुदेव का, तो यदि बलदेव रह गया तो कृष्ण भी रह जाएगा, क्योंकि बलदेव कृष्ण के बिना नहीं रहते, कृष्ण बलदेव के बिना नहीं रहते, दोनों में बहुत घना प्रीति है, और आप छोड़ के नहीं आना। किंतु तुरंत सब खबर पड़ी ब्रजदेवियों को, रातों रात सब आकर जसोदा माता को घेर लिया, आप आदेश मत दो। नंद बाबा से बहुत प्रार्थना की किंतु नंद बाबा सुने नहीं। अक्रूर ने भगवान से इतना प्रार्थना की, इसके पहले नारद जी आए, नारद जी आकर के कृष्ण बलदेव से प्रार्थना की, कब तक ब्रज में ऐसे रहेंगे, आप उबार हरण करने के लिए आए और आप इसमें लीला में मस्त हो गए, गोचारण में और रासलीला आदि में खेलकूद में बस आप मस्त हो गए, अब क्या होगा, देवकी वसुदेव का क्या होगा, यादवों का क्या होगा। ये जरासंध कितना बलवान, कालजवन, धृतराष्ट्र, शकुनी हैं और एक कौरव लोग हैं, कैसे दुनिया के लिए हत्यारे हैं, नाश करने वाला है, लुटेरा है, राक्षस है, इन लोगों को उद्धार कौन करेगा। तब कृष्ण बलदेव सोचने लगे और पृथ्वी का भार कैसे उतरेगा, पृथ्वी देवी इतना दुखी है असुर के ताप से भार से। बहुत प्रार्थना की, कृष्ण इंतजार कर रहे थे, अब अक्रूर का निमंत्रण आया। बाबा बोले हम काल जाएंगे, परसों आ जाएंगे। सबसे ये बात कही, कृष्ण ने कही कि मैं परसों आऊँगा। कुछ लोग कहते हैं कृष्ण प्रतिज्ञा किया था परसों आना है। नंद बाबा ने सबको समझाया, हम आज जा रहे हैं, काल रहेंगे, परसों लौटेंगे। कृष्ण बलदेव से मिलने का मौका ही नहीं। फिर भी जब देखा कोई मिल नहीं पा रहे हैं, जब कृष्ण रथ में चढ़ गए सुबह सुबह चलने के लिए मथुरा, तो सब लोग आकर के अब राजस्वरम छोड़ करके सड़क में ही रथ को पकड़ लिया और रोते रोते कलपते तड़पते लेट गए। हाँ, घोड़े का लगाम पकड़ ली, बोलते रथ के चक्कर के नीचे पीस जाएंगे, पहले हम मरेंगे तो कृष्ण जाएंगे। किंतु अक्रूर बड़ा चालक है, रथ को पीछे कर ली, वो लोग आगे आ गए तो रथ को पीछे कर ली, क्यों पीछे कोई है नहीं, पीछे करके ये मूर्छित हो गए, बेहोश हो गए, रथ को लेकर जंगल में से कहीं और हो रास्ता काट करके लेके चल दी। जब सांस लेने दी घोड़ों को, रथ चलाते गए, जब मथुरा के निकट आए भातृल अक्रूर घाट जमुना किनारे, शाम हो गया, तब उन्होंने स्नान अनिक करके तब चलेंगे सोचा। सारा दिन खाना नहीं, पीना नहीं, स्नान नहीं, अनिक नहीं, तो समुद्र जमुना जी में गए स्नान करने, तो पानी में गया तो देखा कृष्ण बलदेव तो ऊपर बैठे हैं, वो अंदर में हैं पानी के अंदर, तो बड़ा हैरान हो गए, ये अंदर भी है, बाहर भी है, सर्वत्र है, क्यों? कृष्ण बलदेव वहाँ से ब्रज के लिए उल्टा लौट गए। ये जो वसुदेव नंदन कृष्ण है और बलदेव हैं, वो दोनों अक्रूर के साथ मिल करके फिर दोबारा आए मथुरा में, आकर के मथुरा में भ्रमण किया, सब देखा। दूसरे दिन सुबह से सबको पूछने लग गए, कहाँ धनुर्यज्ञ होना है, कहाँ है रंगमंच, क्योंकि भातुर के पास में घुस प्रवेश करेंगे तो वहीं है कंस किला, कंस का घर है राजभवन, और रंगमंच कहाँ बनाया, वो होली गेट के बाहर रंगेश्वर महादेव के पास, विशाल खाली जंगल था, एरिया था, वहाँ रंगमंच बनाया, ऊंचा आसन बनाया, सिंहासन, सब कुछ धनुर्यज्ञ होगा। कृष्ण बलदेव पूछते पूछते जा रहे हैं तो सब लोग जानते हैं कैसे कुबलाई पीढ़ को रखा, कैसे और सल तो सल चरण मुष्टि को रखा है, और बड़ा सुंदर स्टेज बनाया है। और कृष्ण बलदेव पहुँचे तो हाथी के साथ लड़ाई, अंदर गए तो चरण मुष्टि आ गए, सब जानते हैं। इसके बाद में जब काल कंस को ख़त्म करेंगे करके, कृष्ण बलदेव बोले सल तो सल से चरण मुष्टिक से, भाई तुम बड़े बड़े पहलवान हो, हम छोटे छोटे बालक है, बालक बालक से कुश्ती करेगा, बोले तुम दूध पी करके जंगल में घूम करके तुम मस्त, और हमारे जैसे पहलवानों को तो तुम कुछ गिनते ही नहीं, अगासुर बकासुर को तो तुमने कहाँ उड़ा दिया, हम कौन होते हैं, अतः हमसे पहले कुश्ती करो, इसके बाद। तो कुश्ती कसरत करने लगे, ये दोनों कृष्ण बलदेव को उठा करके आकाश में फेंकने लग गए। बोला अच्छा, तुमको दुनिया देखने की इच्छा हो रही है, कृष्ण बलदेव ने उनको फेंक दिया, तो गिरे तो तब तक तो उनको हलवा हो गया, तो और रगड़े तो देखा कुछ है ही नहीं, फेंक दिया। फिर इतने में दो चार और आ गया, कौन सा ने आदेश दिया, उनके भाई लोग आ गए, इनने हाथ में था हाथी के दांत, पीट पाट करके सबको दुरुस्त कर दी। फिर कृष्ण उछल करके वो 22 हाथ ऊंचा कंस के रंगमंच है वहाँ चल गए। कंस उठ के खड़ा हो गया, तलवार निकाल ली, बोले मामा दो उपहार दो, कसरत तो किया, कुश्ती किया, दंगल किया, दो। कांपने लग गए, घबरा करने लग गए, हैं अरे उछल के कूद कर नीचे गिर गया कंस। गिर कृष्ण भी उछले, अरे कहाँ जा रहे हो? देखा गया छाती में बैठ गया, थोड़ी हिलाने लग गया, देखा है ही नहीं, वो कहाँ गए? कुछ दिए भी ना निकल गए, हमें बुलाया, कुछ उपहार तो दो। फिर एक पैर बलदेव ने पकड़ लिया, एक पैर कृष्ण ने, घसीटने लगा, देखा कुछ है ही नहीं। इतने हंसती नाचती दोनों पत्नियाँ रोती पिटती आई, छाती पिटती हुई, और सारी दुनिया आए रोने पिटने लग गए, हाय हाय भांजा ने मामा को मार डाला, हैं हत्यारे है, ब्रज से आ गए हैं, हैं कितनों को मारा, इनको पाप भी नहीं छूता है, इनके बाप भी नहीं बोलते, रोते पिटते इन्हों घसीट करके खींचते 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 कंस खार नाले बन गए, वो ध्रुवघाट ले गया और उनको जलाया। फिर एकादशी दिन सबको लेके 3 वन की परिक्रमा की, मथुरा गोर गोविंद वृंदावन, एक साथ 3 वन की परिक्रमा की, क्योंकि जितने ब्रज के लोग आए वो नहीं, जितना मथुरा के लोग थे सब लोग बड़े दुखी थे। जेल से सबको निकाला और सब लोग को बोले जब तक मथुरा देवी वृंदावन धाम और विशेष करके गौर गोविंद ये तीनों के स्पर्श से ही मुक्ति मिल जाता है तो कष्ट क्यों होगा? दुष्ट दानव कैसे कष्ट दे सकता है? यदि इस जीवन में किसी ने मथुरा की परिक्रमा की तो मथुरा मधुरा समस्त पाप ताप रोग शोक भय मोह दुनिया दुनिया सबसे मुक्ति मिल जाएगा, छुटकारा मिल जाएगा। लोग कहाँ कहाँ भाग दे, वैष्णो देवी कहाँ भाग दे, कैला मैया कहाँ भाग दे, बैला मैया, किंतु मथुरा देवी की महिमा नहीं जानते। एक जीवन में एक दिन मथुरा की परिक्रमा किया तो उनका सारा जन्म जन्मांतर की सारा रोग शोक से मुक्ति, सब छुटकारा। और यदि गौर गोविंद की परिक्रमा की तो उनका पहले प्रारब्ध कितने करोड़ जन्मों का वो भी गया खत्म, और यदि वृंदावन की परिक्रमा की तो भगवान के प्रेम और स्नेह प्राप्त कर लेगा। तो भगवान खुद सबको लेके मथुरा से चल के गौर गोविंद होके वृंदावन परिक्रमा करके मथुरा पहुँचे। क्यों कंस मर गया? कितने हत्यारे हत्या हुआ, हैं छुटकारा कैसे मिले और सबके मन पवित्र कैसे हुए? इतना गंदगी खूनों का और मांसों का ढेर हो गया, सबको जलाया, जमुना में स्नान करके विश्राम घाट में फिर नंद बाबा से शाम को मिले। नंद बाबा तो इंतजार कर रहे, 3 दिन हो गया आया नहीं, कहाँ चला गया, क्या कर रहा है, हैं बोलते बाबा मैं जब इनको जेल से निकाला ना तो ये लोग हमें पकड़ लिया। बोलते हैं बलदेव तो बोसदेव का बेटा है, मेरे को बताया तुम भी हमारा बेटा हो, हैं तुम नंदजसदा का नहीं, क्योंकि नंदजसदा तो बड़े बूढ़े हैं, उनके बच्चे थोड़ी होते हैं और गोरे चिट्टे हैं, और देखो तुम काले को लुटे हो तो कैसे हो सकते तुम नंद बाबा नंद का बेटा? नहीं नंद का बेटा तुम नहीं, तुम हमारा ही बेटा हो। और सब लोग बोल रहे हैं आने नहीं दे रहा है, और जो आने को मैं सोचता हूँ तो रोने पिटने लग जाते हैं, हैं क्या करे? और बाबा बाबा बोलते हैं ठीक है बलदेव तो बसदेव का बेटा है वो रख ले उसको, तुम हमारे साथ चलो। दाऊ कहते हैं नहीं कभी संभव नहीं, मैं कृष्ण को छोड़कर के एक मुहूर्त काल को ही नहीं रहूँगा, मैं भी जाऊँगा, मैं भी तो आपका ही बेटा हूँ, आप मेरे पिता है बाबा है। बोलते देखो बसुदेव का कोई पुत्र नहीं है, तुमको रहना चाहिए। कृष्ण कहते हैं बाबा एक बात बताऊं? तो क्या? बोले देखो मैं तो कौन सा अपने पाप से मर गया, किंतु बदनामी तो मेरी हुई, अब उनके ससुर है जरासंध, दोनों पत्नियां उनके अस्थियां नाचती, कौन सा उनकी बेटी है रोती बेटती बाप के पास चली गई, और जरूर बाप आक्रमण करेंगे। यदि मैं ब्रज में जाऊंगा ना, वहीं आक्रमण करेंगे और ब्रजवासी को कष्ट देंगे, सताएंगे, और मथुरावासी को तो आग लगा देंगे। तो इससे तो अच्छा है मैं कुछ दिन ठहर जाऊं, इन जादवों को अपने अपने सुरक्षा में ला करके रख करके और दुष्टों को विनाश करके मैं आ जाऊंगा। आप चले जाओ, मैं तुरंत आ रहा हूं, इनको सब ठीक ठाक करके तो मैं आता हूं, क्योंकि इनके यहाँ कोई संभालने वाला नहीं है। तो उग्रसेन को दूसरे दिन राजा बना दिया। तो नंद बाबा बोले ठीक है, खुद नहीं राजा बने, सुरसेन देवक सबको अपने में कर दिया, दिकोरो अक्रूर को। कृष्ण तब नंद बाबा को समझा, ये सब उपहार लेके जाओ। बोले मैं जाऊंगा तो बोलेगा ना कृष्ण को, मथुरा के बाजार में बेच के और ये सोना चांदी हीरा जरात कपड़े लगते ले आया, मैं नहीं ले जा रहा, मेरे घुसने भी नहीं देंगे। तो नहीं बाबा ले जाओ, बोलना कृष्ण ने दिया, यदि नहीं पहने को आके देख के दुखी होंगे, हैं कभी तो मैंने कुछ दिया ही नहीं, अभी कुछ दे रहा हूँ तो ले जाओ। बड़ा समझाया, नंद बाबा दुखी हो गए, अपने गाड़ाओं को उठाया, सीधाम सुदाम बुसदाम सो कृष्ण लवंग मधुमुख जितने लोग आए थे बाबा के साथ चल दिए। कृष्ण रह तो गए किंतु तड़पने लगे, एक मुहूर्त काल ब्रज के अलावा रहे नहीं, ब्रजवासी के बिना रहे नहीं, कुछ खाए नहीं। नंद बाबा को बोले यदि मेरा आने में देर हो जाए ना, तू कुछ माँ से बोलना, कुछ हमारे लिए भोजन भेज देंगे किसी के हाथ। तो जीव गोस्वामी प्रभु लिखते हैं गोपाल चंपू में, कृष्ण कभी मथुरा का भोजन नहीं किया, न द्वारका का भोजन किया। प्रतिदिन दो चार दूत कृष्ण भेजते थे, खबर लेके आते थे, खबर देते थे और ब्रज का ही वो भोजन लाते थे, वो दूध दही मक्खन घी और वही भोजन करते थे। किंतु तड़पते थे, कैसे मैं जाऊँ, कैसे मैं मिलूँ। ये सब गोपाल चंपू जी गोस्वामी ने बड़ो सुंदर व्याख्या की और लिखा है। द्वारका चले गए तब भी रोज दिन वहाँ से दूध भेजते थे, और जब नंद बाबा सुनते हैं आज कृष्ण ने ये असुर इनको मारा, इनको ख़त्म किया, रुक्मिणी से विवाह हो रहा है, 16108 नंद बाबा यहाँ ब्राह्मण को दान देते हैं, किंतु नंद बाबा भोजन पान जस्तो माता कभी नहीं किया, क्यों बड़े दुखी। कृष्ण को बिना खिलाए अपने हाथ से लड़ लड़ाए, कभी जल भी ग्रहण नहीं किया, केवल कृष्ण नाम रस कृष्ण के स्मरण से ही अब तक जीते जी रहे। सीधाम सुदाम सखा लोग कभी ब्रज में प्रवेश नहीं किया, वो माठ वन में ही बैठ गए, वहाँ से अंदर नहीं आए। सखियाँ मंजरियाँ उद्धव कैरी में प्रवेश कर गया, कभी बाहर नहीं आए, केवल दास लोग नुकर चाकर वो विराजमान रहे, कुछ ब्राह्मण ब्राह्मणी रोज दिन कुछ बना लेते, किंतु नंद जसदा सबसे अलग हो गए। तो ये सब लीलाओं को सुंदर रूप से वर्णन दिया हमारा आचार्यों ने। अब हम लोग काल सुनेंगे, आज यहीं तक रहे। गोट प्रमाण दे।